अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त वृंद परम हर्षोल्लास परमानंद का विषय परम पावन परम पुनीत परमानंद के ये क्षण इन परम पवित्र क्षणों का प्रातःकालीन नम्रत बेला में श्री प्रेमपुरी आश्रम के सुंदर भवन में बैठकर हम लोग परम शांत एकांत वातावरण में इस माया नगरी में महापुरुषों का परम पुरुषार्थ स्वरूप जो ये सुंदर सत्संग भवन हमको मिला है ये हमारा आपका सौभाग्य है। उन महापुरुषों का बारंबार धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारा मन हमारा तन इस ओर लगता रहे। वर्तमान में श्रीमद् भगवद गीता का षोडश अध्याय, सोलहवें अध्याय में हम लोग जो है दैवी संपदा आसुरी संपदा का निरूपण भगवान कर रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से अध्यात्म के बाजार में अगर कुछ खरीदना है तो उसके लिए तुम्हारे पास दैवी संपदा होना आवश्यक है, क्योंकि बिना संपदा के बाजार में कुछ मिलता नहीं। तो अध्यात्म को यदि बाजार मान लिया जाए तो वहां पर अति आवश्यक है ये संपदा, बिना संपदा के प्राप्त होने वाला नहीं है। और उस वहां की जो मुद्राएं हैं उनका हम लोग श्रवण कर रहे हैं, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीह चापलम। हम लोगों ने कल त्याग के ऊपर विचार किया कि किस प्रकार से सर्व कर्म फलों का जब हम परित्याग कर देते हैं, है ना, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागा त्यागात शांति अनंतरम। जब हम कर्म फलों के त्याग की क्रिया को सीख लेते हैं, भगवान ने जो है समझाया है ना, तो उसी का अगला ही रूप है ना, शांति। लेकिन ये दैवी संपदा के गुणों में शांति शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, एक है शांति और एक है परम शांति, है ना, एक है आत्मा और एक है परमात्मा, है ना, परम शब्द लग गया, यानी एक तो है शांति और एक है परम शांति, है ना। परम शांति तो तभी मिलेगी जब हम अपने स्वरूप में क्या हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले जो प्रयास हमको करना है वो है शांति का, क्योंकि बिना शांति के आपको जो है आपका चित्त परमात्मा की ओर जाने वाला नहीं है। परमात्मा की ओर हमारा मन हमारी बुद्धि स्थिरता को तभी प्राप्त होगी जब हमारा मन क्या होगा, शांत होगा, है ना। जब तक आपके अंतःकरण में शांति नहीं होगी, जब तक आपके चित्त की चंचलता समाप्त नहीं होगी, है ना। तो चित्त की चंचलता क्यों है, सबसे पहले तो विचार ये करना पड़ेगा चित्त में चंचलता क्या है। तो जब आपने देखा चित्त की चंचलता के ऊपर जो है विचार करना प्रारंभ किया तो दिखाई दिया महाराज संकल्प और विकल्प, और दूसरी है वासना। वासना का उदय होने के बाद हमारे अंदर संकल्प विकल्प का उदय होता है, और ये संकल्प विकल्प ही हमको जो है अशांत कर देते हैं। ज्यों ज्यों सबसे पहले तो जड़ मिटा दो, यानी वासना को ही मिटा डालो, इच्छाओं को ही मिटा डालो, और जब इच्छाओं को मिटाएं तो बोले महाराज फिर जीवन जिएंगे कैसे, जब तक आपने इच्छा नहीं की सत्संग भवन में आओगे कैसे। क्यों भाई, जब आपने इच्छा हृदय में धारण की तभी तो आपकी बुद्धि ने आपके पैरों को प्रेरित किया और आपके पैर सत्संग भवन की ओर बढ़े, क्योंकि बिना इच्छा के तो एक कदम भी जीवन का आप जी नहीं सकते। अरे भाई, जब तक आप इच्छा नहीं करोगे मैं भोजन करूं, तब तक आपकी बुद्धि उस चीज का निश्चय कैसे करेगी। पहले मन करता है कि मैं भोजन करूं, उसके बाद बुद्धि उसका निश्चय करती है, और बुद्धि के निश्चय करने पर कर्मेंद्रियां उसी प्रकार की व्यवस्था में लग जाती हैं। ये जीवन की क्या है, प्रक्रिया है कि नहीं है। पहले हमारी इच्छा उदय होती है, इच्छा उदय होने के बाद फिर हम जो है बुद्धि के द्वारा उसका निश्चय करते हैं, और निश्चय करने के बाद अपनी कर्मेंद्रियों को जो है क्रियान्वित कर देते हैं, और वो हमारा कार्य जो है क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। तो ये जीवन की प्रक्रिया है। तो देखा गया है कि क्या महापुरुषों के जीवन में वासनाएं नहीं होती हैं, तो देखा जाता है मरते दम तक होती हैं महाराज, है ना। कहां तक होती हैं? हाँ, इसीलिए हमारे यहां रुद्री का जो भगवान का अभिषेक का पाठ होता है ना, तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, आखिरी तक अंत तक ये मन पीछा नहीं छोड़ता हमारा। आखिरी तक महापुरुषों को भी क्या करते देखा जाता है, इच्छा करते देखा जाता है हमारा। ऐसा नहीं है कि महापुरुष इच्छा नहीं करते, लेकिन महापुरुष वही इच्छा करते हैं जो तत्क्षण क्या हो जाए, पूरी हो जाए, कहानी खत्म हो जाए वहीं की वहीं। ऐसा इच्छा नहीं करते हैं कि जिसके लिए फिर क्या करना पड़े, बड़ी भारी व्यवस्था हो, फिर जो है उसके लिए अनेक अनेक जन्म लेने पड़े, ऐसी इच्छाएं नहीं होती हैं उनकी, है ना। जो भी इच्छाएं होती हैं बड़ी जो है साधारण सी इच्छाएं, बिल्कुल तत्क्षण पूर्ण हो जाने वाली इच्छाएं होती हैं। और वो इच्छाएं पूरी होने के बाद भी, जैसे हमारे जो है भीष्म पितामह ने संकल्प किया कि मैं उत्तरायण में ही अपने शरीर को क्या करूंगा, छोड़ूंगा, और महाराज इसके लिए उनके पास क्या था, संकल्प शक्ति थी महाराज। दो चीजें ना, संकल्प विकल्प। हमारे संकल्प क्यों नहीं प्रभावित होते हैं? क्योंकि हम बहुत सारी व्यर्थ की इच्छाएं करते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि हमारे संकल्प में किसी प्रकार की शक्ति नहीं रह जाती। भीष्म पितामह ने संकल्प किया और उनका संकल्प पूरा हुआ कि अधूरा रह गया? पूरा हुआ महाराज। तो ये संकल्प विकल्प ऐसा नहीं कि महापूर्ण मुक्ति की प्राप्ति की भीष्म पितामह ने, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके समक्ष खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने देखो इच्छा करके उस इच्छा को पूरा किया। वासना गलत नहीं, शुद्ध वासना कभी भी आपको भटकाएगी नहीं, शुद्ध वासना कभी आपको परमार्थ से विमुख नहीं करेगी, लेकिन ज्यों ज्यों आपकी वासनाएं अशुद्ध होती जाएंगी त्यों त्यों हमारा मन अशांत होता जाएगा, और उतने ही ज्यादा ज्यादा जो है संकल्प विकल्प हमारे जीवन में क्या हो जाते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। और जितने ज्यादा संकल्प विकल्प होंगे उतना ही हमारा मन अशांत होगा। अशांत मन में कभी परमेश्वर का चिंतन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। जब भी मन आपका अशांत होगा आप परमेश्वर का चिंतन नहीं कर सकते, और मन जितना ज्यादा शांत होगा उस ऐसे शांत मन वाले को भगवान का चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, उस स्वतः चिंतन, जिस प्रकार से किसी जल को ऊपर से गिराया जाए, है ना, जब जल को ऊपर से गिराया जाए तो उस जल को ऊपर से गिरने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, है ना, अप्रयत्न रूप से वो जल नीचे गिरता। उसी प्रकार से जब हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, किन चीजों से, वासना संकल्प और विकल्प, जो भी वासना करो जो भी इच्छा करो उसको तत्क्षण क्या कर लो, पूरा करो। ऐसी इच्छा मत करो जिसके लिए तुमको बहुत ज्यादा विचार करना पड़े, अगर वो आएगा उससे मिलूंगा ऐसी बात करूंगा फिर वो मेरी बात मानेगा कि नहीं, अगर मान लेता तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मेरा काम बन जाएगा, है ना। ऐसी ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि नहीं करते हैं जीवन में? तो बहुत सारी ऐसी वासनाएं जिनका वास्तविकता में हमारे जीवन में कोई कार्य होता नहीं है, और विशेष करके जो साधक के लिए है यहां पर, है ना, क्योंकि ये दैवी संपदा के गुण साधकों को ही गिनाए जा रहे हैं, और जिनके जीवन में साधना ने उनको इन गुणों का क्या करना है, क्यों भाई। सीधी सी बात तो ये है कि अगर हम जीवन में साधक नहीं बनना चाहते तो इन गुणों का हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं है। अगर सांसारिक जीवन ही हमारी प्राथमिकता है तो तुम्हारा संसार जैसे चल रहा है सुख दुख रूपी संसार, वैसे तुम भी चलते जाओ। लेकिन यदि तुमने अपने आप को साधक बना लिया है और परमार्थ का पथिक अपने आप को मान लिया है तो इन चीजों के ऊपर विचार करना पड़ेगा हमारा, है ना। और एक शांति जो हम लोग शांति पाठ में बोलते हैं ना तीन बार, क्या बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति, ये तीन शांति इसीलिए बार बार बोली जाती है। कौन कौन सी, दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीन अशांतियां ही हैं, है ना। जब आप विवेचन शांति का करना प्रारंभ करेंगे तो ऋषियों ने इसीलिए हर शांति पाठ के बाद जितने भी मंत्र हैं सबके बाद तीन बार क्या कहा, शांति शांति शांति, ये तीन बार जो शांति बोला जाता है ये इसलिए नहीं बोला जाता कि दोहराने के लिए, तीन प्रकार की जो हमारी ताप हैं जिनसे हम अशांत हो बैठते हैं, है ना। एक है दैहिक, आपके शारीरिक बाधाएं यानी दुख जिनको हम लोग बीमारियां कह सकते हैं, या जो भी आपके देह से संबंधित दुख आपदाएं हैं, अशांतियां हैं जिनकी पूर्ति में हम रात दिन लगे रहते हैं, भूख प्यास हैं, जितना भी जो कुछ भी है देह के व्यापार को आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। और वास्तविक सत्य तो ये है कि हम अपनी देह की सेवा में इतने अशांत हो जाते हैं कि हम दूसरे की दुख तकलीफ को भी समझते नहीं हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि हम अपने आप तो अशांत होते ही हैं और दूसरे को भी क्या कर देते हैं, अशांत कर देते हैं। अच्छा, आपने देखा है कभी आपको अगर किसी को जुखाम हो जाए और वो कहे कि महाराज मुझे बहुत जुखाम हो गया, बड़ा सिर में दर्द हो रहा, कभी आप ध्यान देते हो उसकी तरफ? अच्छा, जिस दिन आपको होता सारे घर को हिला देते हो कि नहीं हिला देते? क्यों भाई? जब दूसरे को होता है तो उसका अनुभव हमको नहीं होता, हम उसको बड़े प्रेम से समझाते हैं, अरे ठीक है दो दिन में क्या हो जाएगा। जब जो अपने को होता है तब, हाँ तब विशेष होता है, ऐसा लगता है दुनिया में पहली बार किसी को क्या हुआ। वास्तविकता में हमारा सारा जीवन अपने शरीर की सेवा में ही निकल जाता है महाराज, ध्यान देना। ये जो शांति की बात हो रही ना, और हमारे महापुरुष ऋषियों ने जो ये हर शांति पाठ के मंत्र में शांति 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 जो किया है वो इसीलिए किया है। पहले तो दैहिक ताप, रात दिन जो हम अपने शरीर की सेवा में लगे हुए हैं, इस नाव की सेवा में लगे हुए हैं। नाव अच्छी होनी चाहिए, ये बात सत्य है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए कि इसी को ही अच्छा बनाने में क्या हो जाए, है? अरे भाई, नदी के उस पार जाना है और इस पार नाव खड़ी हुई है और आपने अपनी नाव को सजाना शुरू किया, सुबह से क्या हो गई? हमारे एक महापुरुष जो है बड़ा सुंदर जो है वो दुआ बोलते हैं, है ना, चलते चलते सांझ हो गई, सांझ से हो गई भोर, लेकिन अब तक समझ न पाए जाना है किस। अभी तक यही नहीं मालूम कि भगवान का होना है या संसार का होना है। क्यों भाई, हुआ कुछ निर्णय? कोई निर्णय नहीं है हमारे पास, कभी संसार अच्छा लगता है कभी भगवान। और इसका परिणाम है कि रात दिन हम अपने शरीर की सेवा में ही, है ना, लगे रहते हैं, इसको ही स्वस्थ बनाने में लगे रहते हैं। रात दिन कोशिश मनुष्य की होती है कि हम हमेशा कैसे दिखाई दें, जवान दिखाई दें या बूढ़े। हाँ, गलती से भी कोई कह दे महाराज अगर आपकी एज जो है 40 साल हो और गलती से किसी ने 45 कह दिया महाराज, क्यों भाई? उस दिन वेदांत याद आता है, हैं? क्यों भाई, वेदांत याद आता है या गुस्सा आता है? मन करता है इसको खा जाए, पागल हो गया है ना। देखो ये है अशांति, ये अशांति है, लेकिन लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि ये हमारा क्या पड़ गया है, रूटीन, ये स्वभाव बन गया हमारा, ये हमारा रोज का स्वभाव बन चुका। इसका परिणाम ये है कि हम इस अशांति को अशांति मानते ही नहीं, और उसके बाद हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि भगवान का चिंतन क्यों नहीं होता, हम भगवान को क्यों भूल जाते। इसलिए भूल जाते हैं, ये जो अंतःकरण की स्थिति है, दैहिक ताप से हम प्रभावित हो जाते हैं, तरह तरह के दैहिक ताप हैं, और जीवन पर्यंत इन्हीं दैहिक तापों को मिटाने में हम लगे रहते हैं, है ना। और उसके बाद जो है दूसरा नंबर किसका आता है, भौतिक ताप का नंबर आता है, चीज वस्तु पदार्थ का जो आकर्षण हमारे जीवन में है। जब भी हम कोई नई और बढ़िया चीज देखते हैं हम उसकी इच्छा आकांक्षा कर बैठते हैं। ये जो भौतिकता का जो साम्राज्य है, जो भगवान ने मनुष्य को नहीं किसको दिया है, देवताओं को दिया है। भोग के लिए कौन है? देवता है। मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है महाराज। आप किसी भी भोग को, वैसे तो वैज्ञानिक जो रूप माना गया है वो तो 8 घंटे माना गया है, आपका प्रिय से प्रिय भोग मैक्सिमम जो है ना, जिसको बिल्कुल अपर लिमिट बोला जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे है। 8 घंटे से ज्यादा आप किसी भी चीज को भोग, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, किसी भी चीज की हो, तो मनुष्य का वास्तविकता में तो देवता हमेशा देखो सजे हुए दिखाई जाते हैं कि नहीं, हमेशा सजे रहते हैं महाराज। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है, अपने संपूर्ण आभूषण और सुंदर वस्त्रों का क्या कर देता है, सोते समय साफ परित्याग कर देता है। कर देते हो कि नहीं? अगर आपको भोग के लिए बनाया होता तो सोते समय क्या करते, सारे गहने कपड़े सूटेड बूटेड होके सोते कि नहीं सोते, जूते उते पहन के? लेकिन ऐसा नहीं, साफ बिल्कुल एकदम समाप्त करके आप भोगों से एक तरफ होकर आराम से निद्रा को क्या करते हो, प्राप्त करते हो। जितना हमारा स्वतंत्रता होगी उतनी ही बढ़िया नींद आएगी, और जिस दिन आपको जूते मोजे सब पहना के लिटाया जाए आएगी नींद रात में, है बिल्कुल नींद आने वाली नहीं है। तो इसका मतलब है हम भोग प्रधान तो हैं ही नहीं, और भोगों को एक सीमा के आगे भोग भी नहीं सकते हैं। तो ये जो भौतिक जगत की भयंकर दौड़ है जिसमें हम आप शामिल हैं, भौतिकता के हर आनंद को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, नई से नई चीज को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, दूसरे के पास हो ना हो हमारे पास होनी चाहिए, या अगर दूसरे के पास है तो हमारे पास भी वैसा ही होना चाहिए, ये दौड़ समाप्त हो जानी चाहिए। यदि आप परमार्थ पथिक हैं, आपके अंदर ये भौतिक दाह नहीं होना चाहिए, है ना, जो सांसारिक व्यक्ति के अंदर देखा जाता है कि जब हम दूसरे के सामान को देखते हैं तो उसी प्रकार का सामान अपने घर में लाने की क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं। तो ये जो भौतिकता का साम्राज्य है इसकी तरफ से आंख बंद कर लो तो भौतिक शांति हो गई। तीन शांतियां है ना, ओम शांति शांति शांति, कैसी, पहली तो दैहिक शांति, दूसरी भौतिक शांति, और तीसरी जो सबसे भयंकर अशांति है जिसमें कोई बचने वाला नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं दैवीय आपदा। दैवीय आपदा और भौतिकता वैसे एक ही में आता है, और उसके बाद मानसिक अशांति आती है। तो दैवीय आपदाओं को यदि आप भौतिक में जोड़ लें तो दैवीय आपदाओं से हम इतने आक्रांत हो जाते हैं कि हम अपने जीवन क्रम को बदल देते हैं, आध्यात्मिक जीवन क्रम को बदल देते हैं, सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, या नाना प्रकार की अन्य भी जो दैवीय आपदाएं हैं जिनको हम लोग तरह तरह की महामारियां कहते हैं, है ना, बड़ी बड़ी महामारियों से जो है ग्रसित होने पर हम अपनी बीमारियों से ग्रसित होने पर हम अपने आप को भगवान से अलग हटा लेते हैं। तो इन सारी अवस्थाओं में जो शांत होकर परमेश्वर की ओर निहार रहा है तो ये दूसरी शांति है, और उसके बाद जो है आपका मन जो भगवान कहते हैं परम शांत होना चाहिए, इसके अंदर ईर्षा द्वेष ये जो झंझावात है ये जिस दिन समाप्त हो जाएगा आपका मन उपरत हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं उपरत हो जाओगे, उपरत का मतलब जैसे सारा काम निपटाने के बाद एक गृहिणी अपने आप को बिल्कुल क्या अनुभव करती, मैं बिल्कुल अब क्या हो गई, सर्व कार्यों से मुक्त हो गई, बड़ा आनंद का अनुभव करती एक गृहिणी। उसी प्रकार से जब आपका मन इन तीनों व्याधियों से शांति 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 कर देगा, यानी तीनों दैहिक दैविक भौतिक तापों से रहित हो जाएगा, उस समय आपको परम शांति का अपने मन में क्या होगा, अनुभव होगा, और इसका परिणाम ये होगा फिर आपको भगवान का ध्यान या चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से ऊपर से गिरा हुआ जल स्वतः नीचे आता है, इसी प्रकार से आपका मन चित्त बुद्धि सब परमात्मा की ओर भागने लगेगी, अपने आप भागने लगेगी। उसके लिए कोई आपको प्रयत्न और प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वाभाविक स्थिति होगी। और अन्यथा अगर आपका मन अशांत है, अगर आपकी बुद्धि अस्थिर है और आप अपने आप को दुखी सुखी अनुभव कर रहे हैं, तो फिर वहां पर आपको भगवान का चिंतन करने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा। मन लगाने की कोशिश करने पर भी मन परमात्मा की ओर जाएगा नहीं, किसके कारण, भाई दो ही वृत्तियां बची ना, क्योंकि सात्विक वृत्ति में स्थित होने पर आपका मन स्वतः परमात्मा में जाएगा। राजस तामस वृत्ति, काम क्रोध जिसको कहते हैं, कल आपको बताया था ना, काम क्रोधों के कारण हमारा अशुद्ध अंतःकरण हमको परमेश्वर की ओर जाने नहीं देता है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से साधक को अपने आप को समय समय तीनों तापों से अलग करते हुए निर्वासनिक अवस्था में, इच्छाएं भी करनी है तो कैसी करनी है, जो तत्क्षण क्या हो जाएं, तुरंत पूरी हो जाएं, और अगर आपके पास व्यवस्था है तो उस इच्छा को तुरंत क्या कर लो, एन के इन प्रकार पूर्ण कर लो, क्योंकि हमारी हर इच्छा हमारे लिए अगले जन्म का क्या है। 84 लाख योनियों में हम लोग एक एक दिन में 5-5, 10-10 हजार योनियां भोग डालते हैं, थोड़ी बहुत नहीं। एक क्षण के लिए एक योनी में गए, वहां से आपने देखा जो मकड़ी होती है या बहुत सारे कीट होते हैं या सर्प होते हैं, इनके अंडों से महाराज कोई एक बच्चा नहीं निकलता, कितने हजारों की संख्या में महाराज छोटे छोटे बच्चे हजारों की संख्या में निकलते हैं, और घंटे भर के भीतर आप देखेंगे उसमें से एक दो को छोड़कर सारे क्या हो गए, मर जाते हैं। तो एक एक दिन में हम लोग हजारों योनियों को क्या करते हैं, भोगते हैं, क्योंकि हर इच्छा आपको पूरी करनी है और हर इच्छा के लिए भगवान ने एक शरीर रचा। अरे भाई जैसे आपको मिठाई खाने की इच्छा हुई तो फिर कहां जाओगे, कपड़े वाले की दुकान में हैं, कहां जाओगे, कपड़ा खरीदने की इच्छा हुई तो किसकी दुकान में जाओगे, ज्वेलर्स की दुकान में कहां जाओगे, कपड़े वाले के यहां जाओगे। तो महाराज जिस चीज की आपको इच्छा पूरी करनी है, खाने की इच्छा पूरी करनी है तो रेस्टोरेंट में जाओगे, मिठाई खानी है तो मिठाई वाले के पास जाओगे, अगर आपको कपड़ा लेना है तो कपड़े वाले के पास जाओगे, अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है तो महाराज ज्वेलर्स के यहां जाओगे, सराफे बाजार में जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे। इसी प्रकार से भगवान ने ये 84 लाख योनियां हमारी आपकी इच्छा पूर्ति की दुकानें हैं, ये आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं भगवान बिल्कुल पक्के ठेकेदार हैं। बोले भगवान कहते हैं जो भी तुम इच्छा करोगे मैं पूरी करूंगा, लेकिन महाराज ये तो नियम बनता है कि नहीं आपके अनुसार भी, कि जो भी आपकी इच्छा होगी उसी दुकान में जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि आप इच्छा करो कि मैं मिठाई खानी और खड़े हो जाओ ज्वेलर्स की दुकान में जाकर कि महाराज मिठाई खिला, तो कैसे खिलाएगा, वो तो कहेगा आप क्या हो गए हो, पागल हो गए। तो जैसी इच्छा करोगे वैसी ही योनि में वो परमात्मा हमको क्या करेगा, भेजेगा। इसीलिए हमारे यहां निर्वासनिक है ना, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सारे ग्रंथ एक ही बात कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने मन को इच्छा रहित करने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और प्रारब्धावसात जो कुछ एक साधक को प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जो भी सांसारिक रूप प्राप्त हुआ है, अमीरी है तो अमीरी का आनंद लो, गरीबी है तो गरीबी का आनंद लो, हर चीज में आनंद लेना सीख लो, मोटे हो तो मोटेपन का आनंद लेना सीख लो, दुबले हो तो दुबलेपन का आनंद सीख लो, काले हो तो कालेपन का आनंद लो, और गोरे हो तो गोरेपन का आनंद लो, लेकिन दूसरे की तरफ मत निहारो कि मैं अगर काला हूं तो गोरा हो जाऊं, मैं अगर मोटा हूं तो पतला हो जाऊं, इन सब चीजों से साधक का कोई मतलब नहीं होना। अगर मतलब है तो इसका मतलब हमको अभी भगवान से नहीं, किससे प्रेम है, संसार से है, और संसार कैसा है, अरे नश्वर है कि नहीं है, क्षणिक है, आज है अगले पल होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं, अभी है और अभी के बाद, अभी थोड़े दिन के बाद बारिश आएगी, रोज आपको टीवी में समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलेगा, यहां से पहाड़ी गिरी, यहां से नदी ने गांव को, पूरे पूरे गांव के गांव महाराज बह जाते, रात में आराम से सोए, खूब भोजन किया, ठाठ से भोजन करके आराम से खर्राटा मार के सो गए, और सुबह नदी, सुबह क्या कर गई नदी, उनको पूरे पूरे गांव को बहा कर ले गई महाराज। ऐसा ही क्षणिक जीवन जिसका कुछ भी पता नहीं कि अगले क्षण में महाराज क्या होने वाला, लोग केदारनाथ के दर्शन करने गए थे और पूरी की पूरी धर्मशाला महाराज नाव की तरह चल रही जल में, टैंकर, जो बचे हुए लोग बताते हैं जैसे महाराज घर जो है मोटर गाड़ी की तरह ऐसे लग रहा हम पानी में जो है यात्रा कर रहे हैं, ऐसी भयंकर अवस्था आ जाती महाराज। क्षणिक संसार, कितना बड़ा प्लान बना के महाराज आदमी घर से निकला होगा, जरा विचार करो। इसलिए इस नश्वर संसार से प्रेम करने के लिए मना किया जाता है, इसमें वासना ऐसी करो जो तुरंत क्या हो जाए। इतनी लंबी मत करो कि महाराज मैं यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा ऐसा होगा वैसा होगा उसके बाद ये करूंगा वहां से फिर ये लाऊंगा। ये जो वासनाओं का संचय है यही हमारे लिए अशांति का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि हम भगवान से मिलन कर ही नहीं पाते, अपने निज स्वरूप की परम स्थिति को समझ ही नहीं पाते, जो परम चैतन्य है, अखंड है, अनंत है, कभी ना खंडित होने वाला है। उस परम चैतन्य से प्रेम क्यों? क्योंकि वो अखंड है, वो इस संसार की तरह कभी खंडित होने वाला नहीं है। तो इसलिए परम शांति का अनुभव करने के लिए पूर्णतया अपने आप को, जो भगवान ने कहा ना चंचलम ही मना कृष्णा है, अर्जुन क्या कहता है, बोले इतना चंचल है वायु रिप सु दुष्करम, वायु की तरह इसको रोकना बिल्कुल भी मैं संभव नहीं मानता हूं। लेकिन भगवान ने कहा अभ्यास एन तो कौंती, अभ्यास के द्वारा, ये वो अभ्यास है, एक बार नहीं एक करोड़ बार इस चीज का आपको जब विचार आप करोगे तब जाकर स्थिति दृढ़ होगी महाराज कि संसार नश्वर है और परमात्मा अखंड अनंत है, जो मेरा अपना स्वरूप है। जब करोड़ों बार आप बारंबार अपने अंतःकरण में इस स्थिति को दृढ़ करोगे तब जाकर आपका विश्वास दृढ़ होगा, एक दो बार में कुछ होने वाला नहीं होगा। जैसे जी रहे हो वैसे जीते रहोगे, संसार की ओर देखते रहोगे, संसार के सुखी और दुखी जीवन की ओर निहारते रहोगे, जो तुमको दुख आएगा उससे दुखी हो जाओगे और जो सुख मिलेगा उससे सुखी हो जाओगे। और इसका परिणाम ये होगा कि सब कुछ पढ़ने के बाद, साधक का थोड़ा बहुत जीवन जीने के बाद, हमारी स्थिति वहीं की वहीं बनी रहेगी। तो अभ्यास करना पड़ेगा महाराज, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा चिंतन का, अपने आप को हर स्थिति में समझाना पड़ेगा, भटकती हुई स्थिति में अपने आप को समझाना पड़ेगा। दूसरा नहीं समझाएगा महाराज, भगवान आके नहीं समझाएंगे, गुरु आके नहीं समझाएगा, अपने आप को ही समझाना पड़ेगा। तब जाकर है ना, जैसे भगवान कपिल के पिता जो है कर्दम ऋषि, जिस समय भगवान उत्पन्न हुए वो कहते हैं प्रभु मुझे आशीर्वाद दो मैं वन में जाकर आपका साक्षात्कार करूं। क्यों भाई कैसा लगता सुनने, सामने भगवान खड़े हुए हैं जगदाधार सगुण रूप से पुत्र बनकर, और वो भी जानते हैं ये भगवान है और भगवान भी जानते हैं ये मेरा भक्त है, लेकिन कर्दम ऋषि कह रहे हैं महाराज कि मुझे आशीर्वाद दीजिए मैं वन में जाकर आपका क्या करूं। तो भगवान तो सामने खड़े हुए हैं, क्यों भाई अब वन में जाके वो क्या साक्षात्कार होगा हैं? देखो लोग कहते हैं अप्रोच, तो भगवान तो अप्रोच होकर सगुण रूप से भी कर्दम ऋषि के सामने खड़े, अब वन में जाके वो क्या करेंगे हैं? वन में जाके क्या करेंगे बताओ? वन में जाकर जो सांसारिक गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न हुआ मल विच्छेप है, एकांत का सेवन करते हुए वो जब अपने सारे मल विच्छेप को शांत कर देंगे तो उसी समय उनको जो वहां पर उत्पन्न हुए सगुण रूप से परमेश्वर हैं उनके अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे। भगवान कहते हैं हे पिताश्री, हे ऋषिवर, आप वन में जाकर मेरा अंतःकरण में अनुभव करें, अपने अंदर मेरा अनुभव करें। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, समक्ष प्रभु हैं लेकिन फिर भी उसको अंतःकरण स्वीकार नहीं करता है। यही अभ्यास भगवान कहते हैं ये जो अभ्यास है, बिना इस अभ्यास के आपको असली कहानी समझ में आने वाली कोई समझा नहीं सकता। एक दिन नहीं 24 घंटे लगातार सुनते रहो तो भी आपके पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है, जब तक स्वतः अभ्यास के द्वारा अपने आप को खुद समझाओगे नहीं, और एक बार नहीं कम से कम करोड़ों बार अपने अंतःकरण को जगह जगह समझाना पड़ेगा, क्योंकि संसार में जैसी जैसी स्थितियां आती हैं वैसे ही हम विक्षिप्त हो जाते हैं, है ना। सुख आता है, दुख आता है, सुख की खबरें हैं, दुख की खबरें हैं, तो जैसा विक्षेप आता वैसे ही हम विक्षेप को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ये विक्षेपित हो जाने से तुम्हारा काम बनने वाला नहीं, ऐसी अवस्था में ही तो समझाना है तुमको, वहां पर ही तो, इसी को ध्यान कहते हैं। एक ध्यान ये है जिसको लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेशन, है ना। आजकल जो मॉडर्न युग है उसमें क्या है, उनको भौतिक जगत में सफलता के लिए क्या करवाया जाता है, मेडिटेशन करवाते हैं, है ना उसको जो है। और हिंदी में अगर लिख दो आप ध्यान क्लास, कोई नहीं आएगा, और आपने ध्यान क्लास की जगह क्या लिख दिया, मेडिटेशन क्लास, भीड़ लग जाएगी, है ना। तो पागलों की कोई कमी थोड़ी है संसार में, तो मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज हो जाती। तो मेडिटेशन में कुछ नहीं, खाली वो जो है आपकी बुद्धि को स्थिर करके सांसारिक सफलताओं के संग जोड़ते हैं, लेकिन यहां जो हमारा दैवी संपदा की शांति है ये वो है मेडिटेशन, जिसको कहते हैं मन बिल्कुल शांत अवस्था को प्राप्त हो जाए, क्योंकि मन वास्तविकता में कुछ है ही नहीं, और जो चीज है ही नहीं उस चीज से हम क्या हैं, दुखी हैं। मन नाम की कोई चीज है ही नहीं महाराज, है तो असली खेल सब बुद्धि का, सारा खेल किसका है, अरे ब्रेन पावर ही तो है आपकी पावर, जब तक ब्रेन है तब तक आप हैं, और ब्रेन नहीं होगा तो मेडिकल साइंस भी आपको ब्रेन डेड घोषित कर देते हैं कि नहीं। तो ब्रेन है, बुद्धि है तो आप हैं, तो बुद्धि का ही सारा खेल है। जिस दिन आपका मन शांत हो जाएगा आपकी बुद्धि शांत हो जाएगी, ध्यान देना, बुद्धि का स्वभाव है शांत, जैसे जल का स्वभाव स्थिर रहना है, जल का स्वभाव चलायमान होना नहीं है। अगर आपने कभी विश्व का एक बहुत बड़ा फॉल है, नागरा फॉल झरना है हमारा, है ना, विश्व का बहुत बड़ा झरना है, और उसमें ऐसा वेग है, तूफानी वेग है, लेकिन अगर आप पूरा हवाई जहाज के जिसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, तो वो अगर वो आप देखें तो बर्ड्स आई व्यू के अनुसार जब देखेंगे तो ऊपर का जल बिल्कुल एकदम शांत स्थिर है, लेकिन जब वो गिरता है नीचे इतनी निचाई में जाकर, तो महाराज ऐसा हाहाकार पैदा करता है कि उस हाहाकार को देखने के लिए वो बड़ी दूर दूर से क्या करते हैं, नागरा फॉल देखने जा रहे हैं महाराज, ऐसा पिकनिक स्पॉट बना हुआ, केवल किस चीज को देखने के लिए, ऊपर से गिरे हुए। और जब ऊपर का दृश्य देखो तो महाराज वहां पर जल कैसा है, शांत बिल्कुल, ऐसा उसमें कोई हाहाकार नहीं है, जल का स्वभाव शांत रहना है। लेकिन जब वो महाराज पतन को प्राप्त होता है तो उसके अंदर हाहाकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक वही स्थिति हमारी बुद्धि की है, बुद्धि हमारी बिल्कुल सदैव शांत है, लेकिन ये हमारा मन जिस प्रकार से सोए हुए माता पिता को छोटा सा बच्चा क्या कर देता है, जगा देता है, चंचल बालक अपने माता पिता को जगा देता, उनकी निद्रा खराब कर देता है, उसी प्रकार से हमारी शांत बुद्धि को संकल्प विकल्प करने वाला ये मन क्या कर देता है, अशांत कर देता है। और जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आपकी बुद्धि तो स्वतः शांत ही है, उसको फिर शांत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब बुद्धि शांत हो जाती है तो वो संसार से जुड़ने की बजाय अपने परम प्रियतम आत्मा से जुड़ जाती है। तब शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा तम गिरिजामति, है भोलेनाथ, कोई दूसरे आप नहीं है, मेरी अपनी आत्मा, मेरा अपना आत्मा ही भोलेनाथ है, और मेरी ये बुद्धि ही पार्वती है, दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं। जब आपका मन शांत होगा आपकी बुद्धि शांत होगी, और बुद्धि शांत होगी तो अपने परम प्रियतम आत्मा से जुड़ेगी, ये जो है परपति से नहीं जुड़ेगी, जो संसार है इसके संग मल विच्छेप को फिर वो प्राप्त नहीं होगी महाराज, फिर स्वयं अपने प्रियतम से जुड़कर आपको आत्मानंद परमानंद प्रदान करेगी। ये प्रक्रिया है महाराज, इसको दैवी संपदा का शांति गुण कहते हैं। जहां पर तीनों ताप शांत हो जाएं, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप शांत हो जाते हैं। एक महापुरुष टिहरी में जो है उत्तराखंड की जो पहाड़ियां उसमें जो है अवधूत वेश में घूमा करते थे, क्योंकि जो उन्होंने प्राप्त कर लिया उनको किसी भी रूप में कोई आपत्ति नहीं है, है ना। हनुमान जी कहते हैं नहीं, रावण से कहते हैं जो तुमने मुझे बांधा है, मुझे बंधन में बंधने में किसी प्रकार की कोई लज्जा संकोच नहीं है, कोई अपमान का अनुभव नहीं हो रहा। तो वो महापुरुष अवधूत वृत्ति में गुदड़ी पहने हुए, गुदड़ी का मतलब होता बहुत सारे चिथड़ों को सड़क से उठाकर बना लेना और उसी को ओढ़कर वो महाराज सड़कों में घूमा करते थे। भोजन मिल जाए तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं, क्योंकि मरने जीने की कोई चिंता ही नहीं उनको। एक बार किसी कुत्ते ने उनको काट लिया, और काट ही नहीं लिया, पैर का पूरा मांस निकाल लिया। अवधूत महाराज अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं। एकाएक किसी ने देखा कि महाराज कुत्ता तो मांस निकाल ले गया और उस जगह से भयंकर रक्तपात हो रहा है। जब रक्त बहते हुए देखा तो उसको बड़ा भयंकर लगा यह दृश्य। महाराज चिल्ला रहे, महाराज जी आपको तो कुत्ते ने काट लिया मांस। जैसे ही उन्होंने देखा, अरे महाराज फिर तो बच्चा क्या रोता जो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। अरे मैं तो मर गया, कुत्ता मेरा मांस ले गया। बेचारा घबरा गया, ये तो मैंने जो है क्या कहते हैं जिसको ततैया या मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये तो बिल्कुल शांति से चले जा रहे थे और मैंने इनका पैर क्या इनको याद दिला दिया। ये तो महाराज उन्होंने तो सारा पूरा इलाका इकट्ठा कर दिया, ऐसा रोए बच्चा क्या रोएगा महाराज। अरे मैं तो मर गया, मुझे मार डाला, कुत्ते ने खा लिया, ऐसा। उसके बाद लोगों ने क्या किया, पट्टी वट्टी बांध गए, फिर सब वहां से भाग गए। और जब सब चले गए फिर अवधूत जी उठ के चले गए महाराज। फिर उनको किसी ने छेड़ा नहीं, बोले इसको याद ही मत दिलाओ कि तुमको कुत्ते ने काटा है महाराज। और वो पट्टी पता नहीं कब तक बनी रही, फिर अपने आप वो पैर का घाव भर गया और महाराज उसी मस्ती में घूमते रहे। ये शांत चित्त पुरुष की अवस्था, बाल्यावस्था रूप जिसको कहते हैं, नहीं हाँ, याद दिला दिया तो याद आ गया और भुला दिया तो शरीर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए जो शांति रूपी दैवी संपदा का गुण भगवान ने गिनाया है, उसका निरंतर हमको अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, जब आप मान अपमान सुख दुख जय पराजय हानि लाभ सब कुछ भूलकर एक रस केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर देखोगे तो आपका भी मन संपूर्ण संकल्प विकल्पों का परित्याग करके, सांसारिक तीनों जो है तापों का परित्याग करके अपने परम प्रियतम आत्मा के संग जुड़ जाएगा। और इसका परिणाम ये होगा, फिर आपके ऊपर इस संसार का 1% भी असर होने वाला, जिस प्रकार से छाता लगाए हुए व्यक्ति के ऊपर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से जिसके मन को परम शांति का अनुभव हो गया है, यानी निर्वासनिक हो गया, कहने का सीधा तात्पर्य यह है, अगर आपका मन निर्वासनिक हो गया है, वासना रहित हो गया है, तो फिर आपको इस दुनिया की कोई भी शक्ति परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि उसका तो स्वभाव ही परमेश्वर से जुड़ना हो गया है। वो संसार में जुड़ने की कोशिश करता है और परमेश्वर से सदैव जुड़ा रहता है। हम आप संसार से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको परमात्मा से जुड़ने की क्या करनी पड़ती है, चेष्टा करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। और इसलिए दैवी संपदा के शांति रूपी गुण के लिए आप निरंतर अभ्यास की क्या कर लें, आदत डाल लें, निरंतर अपने आप को याद दिलाएं, हर स्थिति में याद दिलाएं। भूल जाएंगे, हमारा स्वभाव है, जय सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि अंतकाल में परमेश्वर का ध्यान करने की कोशिश करो, होगा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं ये महापुरुषों के जो अनुभव है महाराज, बोले होगा नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करो। क्यों नहीं होगा, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जो है राजस और तामस स्वभाव के कारण भगवान में मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी जोर लगाए रहो, परमेश्वर की ओर अपने मन बुद्धि को लगाने की चेष्टा करो। शनय शनय उस सात्विक विचार से राजस और तामस दब जाएंगे और सात्विक विचारधारा ऊपर आ जाएगी और इसका परिणाम ये होगा जो ना लगने वाला मन था वो परमेश्वर में लग जाएगा। और परिणामतया जब तुम पूर्णतया सात्विकता में स्थिर हो जाओगे तब तुम्हारे समक्ष पूर्ण रूपेण परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, फिर उनको तुमको बुलाने की या किसी प्रकार की कोशिश तुमको नहीं करनी पड़ेगी। जो असली कार्य ये है, जो हो नहीं रहा है, जो परमात्मा में हमारा मन जा नहीं रहा है, उसके लिए आपको पूर्ण प्रयत्न करना, प्रयत्न करो, लगेगा नहीं लेकिन लगाओ, क्योंकि ये मन तो है ही भटकने वाला, ये तो जाएगा ही राजस तामस में, इसका स्वभाव है, ये अधोपतन का स्वभाव है। लेकिन जब बार बार कोशिश करेंगे तो ये परम शांत सात्विक अवस्था में स्थित हो जाएगा और फिर आपको पर चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी रहो, किसी अवस्था में रहो, किसी भी सांसारिक स्थिति में रहो, फिर आप अभ्यास के कारण निरंतर ऐसी स्थिति में स्थित हो जाओगे। और इसी को हम लोग जो है शास्त्र की भाषा में महापुरुष कहते हैं, सिद्ध महापुरुष कहते हैं, आत्मज्ञानी कहते हैं, योगी कहते हैं, जो भी आप कहना चाहो, यानी जो भगवान से हमेशा हमेशा के लिए 24 घंटे के लिए जो जुड़ गया है, तो ये परम शांति की अवस्था के द्वारा उसको प्राप्त होता है। उसके बाद एक गुण आता है हमारे यहां अपैशुनम, भगवान कहते हैं जो बहुत आवश्यक गुण है दैवी संपदा का, ज्यो ज्यो आप परमेश्वर के संग जुड़ते जाएंगे ये गुण स्वतः आता जाएगा, है ना। अपैशुनता कहलाती, पैशुनता नहीं, जिसको कहते हैं निंदा स्तुति, दूसरे के ऊपर विचार करना, ये हमारा कार्य नहीं है। परमार्थ के पदिक का कार दूसरे के ऊपर विचार करना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हमेशा दूसरे के ऊपर ही क्या करते हैं, विचार करते हैं। अरे तुमने सुना फलाना हो गया, अरे तुमने सुना ऐसा हो गया, ये जो हमारी आदत है इस आदत को समाप्त करना क्या जरूरत है, सीधे खाली जो है शांति वाला अभ्यास प्रारंभ कर दो, पैशुनता अपने आप समाप्त हो जाएगी, पिशुनता अपने आप समाप्त हो जाएगी। दूसरे की निंदा चुगली करने का जो हमारा स्वभाव, अरे उसने ऐसा किया, अरे उसने वैसा कहा, उसने ऐसा गाया, ऐसा महाराज जो हमारा स्वभाव पड़ा हुआ, दूसरे को ही देखते देखते परिणाम ये हो गया हम अपने आप से दूर हो गए। अरे भाई जब अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाते हो तो अपना घर दूर हो जाता कि नहीं हो जाता। इसी प्रकार से जब आप दूसरे के जीवन के विषय में विचार करेंगे तो परिणाम ये होगा हम अपने आप से दूर हो जाएंगे। तो दूसरे से तो गए गए और अपने से भी चले गए। इसलिए साधक जो है, भगवान ने जो है लंका जाकर के रावण की विवेचना नहीं की, हाँ जो सबसे बड़ी समझने वाली बात है, भगवान ने जाकर रावण की विवेचना नहीं की वहां पर डेरा डाल करके कि रावण क्या खाता है क्या पीता है, इसका सुबह का भोजन क्या है शाम का भोजन क्या है, आइसक्रीम खाता है कि नहीं खाता है, है? क्यों भाई, विभीषण से पूछा भगवान ने कहीं पर कि क्या खाता पीता है? भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है, भगवान का तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, तुम मेरी सीता को वापस कर दो और उसके बाद जैसे मर्जी आए वैसे रहो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने रावण को सुधारने की चेष्टा नहीं की, भगवान रावण से कहते हैं तुम तो मेरी सीता वापस कर दो उसके बाद तुम आनंद लो। लेकिन जब उसने सीता जी को वापस नहीं किया तब वहां पर युद्ध हुआ। लेकिन जो हमारा साधक जीवन है वो किसमें नष्ट हो जाता है, दूसरे के दोषों को गिनने में, निंदा और स्तुति दोनों में समान अवस्था का आ गया है ना, कि ना तो निंदा करनी है और ना किसी की स्तुति करनी है, जो जैसा है जिसको जैसा प्रारब्ध मिला है वैसे अपने प्रारब्ध को वो क्या कर रहा है। अरे भाई जिसने जो भोग इच्छा की है और जो कर्म किए उसके अनुसार उनको जीवन मिला है, राजा है तो राजा, स्वस्थ है तो स्वस्थ है, अगर बीमार है तो बीमार, तो हम दूसरे को देख करके ना सुखी हो ना दुखी हो, हम तो दूसरे के प्रारब्ध को देखें कि इसने जो अपने कर्म और इच्छाएं की उसका परिणाम ये भुगत रहा है, हमसे इससे क्या लेना देना, और इस प्रकार से अपने मन को समझाकर निंदा स्तुति से अलग रहकर पूर्णतया अपने मन को भगवान की ओर मोड़ने की क्या करें चेष्टा करें, अन्यथा दूसरे को ही देखते देखते हमारे यहां बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है, यद्यपि समय हो गया फिर भी आपको सुना देते हैं, बड़ा जोरदार उदाहरण है। एक वैश्या रहती थी और वैश्या के सामने एक महात्मा रहते थे, है ना, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है कथाकारों का। तो जब वैश्या की मृत्यु हुई तो महाराज उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद आए, और महात्मा जी जब मरे महाराज उनको लेने के लिए यमराज आया, तो बड़ी समस्या महाराज, जब गुस्सा हो गए महात्मा, बोले कमाल है, जो वैश्या अपने शरीर को बेचती थी उसके लिए जो है पार्षद और मेरे लिए नरक, ये कैसे। तो बोले महाराज समस्या ये है कि आप सुबह से शाम तक पूजा पाठ तो करते थे लेकिन आपकी निगाह कहां रहती थी, अब फलाना आ गया, आप दिमाग आ रहा होगा, वो ग्राहक आ गया, वो ग्राहक आ रहा होगा, और वो वैश्या की निगाह रात दिन आपके ऊपर रहती थी कि अब महात्मा जी आरती कर रहे होंगे, अब महात्मा जी भगवान को भोग लगा रहे होंगे, अब भगवान का जो है जाप कर रहे होंगे, रात दिन वो आपका चिंतन करती थी और आप उसका चिंतन करते थे, वो आपके कर्मों का चिंतन करती थी और आप उसके कर्मों का चिंतन करते थे, परिणामतया आपके लिए नरक का द्वार खुला हुआ है और वैश्या के लिए जैसा चिंतन वैसी गति। इसलिए पिशुनता नाम की जो चीज है अपैशुनम, इस पिशुनता का जब आप परित्याग कर देंगे तो अपैशुनम हो जाएंगे, दूसरे की तरफ देखोगे वही बनना पड़ेगा महाराज, तुम्हारा रास्ता समाप्त तो हो जाएगा। इसलिए दूसरे की तरफ देखना क्या कर दो, बंद कर दो। यदि परमार्थ में कुछ पाना है तो, और संसार में कुछ पाना है फिर तो महाराज कैमरा लेके पत्रकार लोग घूमते ही रहते हैं, तो दूसरों को ही देखते हैं महाराज और दूसरों को ही सुनाते हैं, यही तो होता है संसार में। तो संसार में विजय पानी है तो महाराज फिर तो पिशुनता बहुत बढ़िया गुण है, लेकिन अध्यात्म में विजय पानी परमात्मा को पाना है तो उसके लिए पिशुनता का परित्याग अपैशुनम भूतेषु दया कल चर्चा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।